आस्तिक की गाड़ी उस वक्त जंगल के रास्ते में थी। अरुणिमा उसके साथ थी, लेकिन आस्तिक अपने दुश्मनों से घिर चुका था। उसकी गाड़ी को चारों तरफ से 10-20 लोग घेरे हुए थे। वे अपने हाथों में हथियार लिए उसे निशाना बनाने के लिए तैयार खड़े थे। शुक्र है कि आस्तिक की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन इतने सारे लोगों के हमले के सामने वो कब तक टिक पाता। अब उसके चेहरे पर तनाव झलकने लगा था, क्योंकि अरुणिमा उसके साथ थी। न जाने क्यों उसके मन में अरुणिमा को खोने का डर समा गया। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में भींच गईं और उसकी गहरी निगाहें आसपास खड़े नकाबपोश लोगों को भेदने लगीं। सबके इरादे खतरनाक थे, लेकिन आस्तिक हार मानने वालों में से नहीं था, खासतौर पर तब जब अरुणिमा की जान उससे जुड़ी हुई थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कसा और अगले ही पल गियर बदलते हुए गाड़ी को फुल स्पीड में वहां से भगाना शुरू कर दिया। सामने तीन लोग हथियार ताने खड़े थे। जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, पर आस्तिक की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। गोलियां उसे भेद नहीं पाईं, लेकिन बोनट को काफी नुकसान पहुंचा। मगर आस्तिक को उसकी परवाह नहीं थी। वो गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रहा था, जबकि पीछे से भी लगातार फायरिंग हो रही थी। बीच बीच में वो शीशा नीचे करके बैक फायरिंग कर रहा था, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता था। हालांकि 10 में से 8 दुश्मनों को वो पहले ही मार गिरा चुका था। अरुणिमा ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक रखा था। वो सहमी हुई निगाहों से ये सब होते देख रही थी। उसकी दहशत बढ़ती जा रही थी। आस्तिक को उसने पहले कभी इतना खतरनाक नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो और ज्यादा डरती जा रही थी। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। लोग उनका पीछा कर रहे थे और उन दोनों को मारने के इरादे से उन पर लगातार गोलियां चला रहे थे। लेकिन आस्तिक ने फौरन हालात को समझा और गाड़ी की स्पीड इतनी तेज कर दी कि पलक झपकते ही दुश्मन पीछे छूट गए। उसकी गाड़ी जंगल के अंदरूनी हिस्से में घुस गई। आगे कोई साफ रास्ता नहीं था, सिर्फ जंगली झाड़ियां, कंटीली पगडंडियां और ऊंचे ऊंचे पेड़। लेकिन आस्तिक को इस वक्त बस यहां से निकलना था, क्योंकि वो अरुणिमा की जिंदगी को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। करीब 1 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद गाड़ी जवाब देने लगी। उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी थी। तभी आस्तिक को एहसास हुआ कि दुश्मन अब बहुत पीछे छूट गए हैं, शायद इतनी दूर कि अब वे उन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। उसने काफी देर तक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। इसका मतलब वो जंगल में काफी आगे निकल आया था। अब शायद वो और अरुणिमा सुरक्षित थे। आस्तिक ने एक झटके से गाड़ी रोक दी। वैसे भी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था और अब वो खराब हालत में थी। उसने नजर घुमाकर अरुणिमा की तरफ देखा। वो अभी भी कोने में सहमी बैठी थी, अपने मुंह पर हाथ रखे हुए। उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो गई थीं। आस्तिक ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अरुणिमा मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक की आंखों में देखती है। आस्तिक उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो तुम सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हैं और वो लोग कहीं दूर छूट रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऊपर बैठो। आस्तिक अरुणिमा को कंधे से पकड़कर ऊपर बैठाता है और खुद सीट पर बैठ जाता है। अरुणिमा देखती है कि उनकी गाड़ी किसी मैदान के आसपास खड़ी है, जहां दूर दूर तक या तो घना जंगल नजर आ रहा है या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मैदान फैले हुए हैं। मतलब आस्तिक सही कह रहा था, वो लोग अब कहीं बहुत दूर रह गए हैं और अब वे दोनों सुरक्षित हैं। अरुणिमा का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी उसका दिल दहशत से भरा था। अभी अभी उसने अपने बच्चों को खो देने का डर इतने करीब से महसूस किया था कि उसकी रूह तक कांप गई थी। वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह कोई जादू हो जाए और वो यहां से गायब हो जाए, ताकि उसके बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन आस्तिक के प्रति उसका एक अजीब सा विश्वास उसे थामे हुए था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि आस्तिक उसे कुछ नहीं होने देगा और उसके बच्चे भी सही सलामत होंगे। जब अरुणिमा को महसूस हुआ कि अब वो और आस्तिक दोनों ठीक हैं, तब जाकर उसकी जान में जान आई। अगले ही पल वो अचानक आस्तिक से लिपट गई। आस्तिक जो अभी कुछ सोच रहा था, एकदम से हैरान रह गया। अरुणिमा उसके सीने से लिपटी सुबक रही थी। आस्तिक को अरुणिमा का इतना डरा और हताश चेहरा देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीरे से एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरा हाथ उसके बालों को सहलाते हुए नरम लहजे में बोला, सब ठीक है, तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये शब्द अरुणिमा के बेचैन दिल को एक सुकून भरी राहत दे रहे थे। उसने अपना चेहरा उठाकर आस्तिक की आंखों में देखा, जिनमें एक अटूट विश्वास था, जो कह रहा था कि वो अरुणिमा को कुछ नहीं होने देगा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी, वही वादा था, जो अरुणिमा को यकीन दिला रहा था कि वो अकेली नहीं है। अरुणिमा बस आस्तिक की आंखों में देखती रह गई और ये शब्द उसके लिए एक जज्बा बन गए। थोड़ी देर बाद आस्तिक और अरुणिमा दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अरुणिमा के हाथ में पानी की बोतल थी, जो गाड़ी के अंदर पड़ी थी। वो धीरे धीरे पानी पी रही थी और आसपास की जगह को गौर से देख रही थी। आखिर ये लोग थे कौन? अरुणिमा के दिमाग में सवाल घूम रहा था। आस्तिक भी हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ आ गए हैं। ये वो जगह बिल्कुल भी नहीं थी जहां वे जमीन देखने जा रहे थे। ये तो बिल्कुल कोई अलग सी जगह थी जहां दूर दूर तक ना तो सड़क दिख रही थी ना कोई रास्ता। आस्तिक ने जेब से अपना फोन निकाला और चेक करने लगा कि ये जगह कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसने फोन ऑन किया उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फोन खराब हो चुका था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन फोन ऑन नहीं हुआ। शायद जब वो उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था तभी फोन गाड़ी में गिरकर खराब हो गया था। अब वो ऑन नहीं हो रहा था। गुस्से में आस्तिक ने फोन हो बेरहमी से सीट पर पटक दिया और माथा पकड़ लिया। अब क्या करें, वो खुद से बड़बड़ाया। रात होने वाली थी और ऐसे में वो अरुणिमा को इस गाड़ी में नहीं रख सकता था जिसका फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था। हेडलाइट भी कुछ देर ही चल पाएगी। ऐसे सुनसान जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं था। कोई जंगली जानवर हमला कर सकता था या कोई और खतरा भी हो सकता था। आस्तिक को जल्द ही कुछ सोचना था। उसने अरुणिमा की तरफ देखा और कहा, तुम बता सकती हो कि ये जगह कहाँ है? अरुणिमा, जो अभी अभी पानी पी रही थी, अचानक चौंक गई और बोली, मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये जगह कहाँ है? आस्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों नहीं बता सकती? तुम तो बैंगलोर की हो ना, तो तुम्हें यहाँ की सड़कें और गलियाँ तो मालूम होंगी। आस्तिक की इस नॉनसेंस बात पर अरुणिमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो इस आदमी का कुछ कर ही नहीं सकती थी। उसने चुंचलाते हुए कहा, हाँ, मुझे बैंगलोर की सड़कें और गलियाँ बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन उन सड़कों और गलियों में जंगल, पहाड़ और खतरनाक रास्ते नहीं आते। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बैंगलोर से हूँ तो मुझे यहाँ की हर जगह के बारे में पता होना चाहिए? मैं कभी इस जंगल में नहीं आई और ना ही मुझे पता है कि ये जंगल कहाँ पड़ता है। आस्तिक झल्लाते हुए अपना सिर पकड़ लेता है और बड़बड़ाता है, कहाँ फंस गया यार। फिर उसने अरुणिमा से पूछा, अच्छा ठीक है, तुम अपना फोन लाई हो? नहीं, मैं अपना फोन नहीं लाई। जैसे ही अरुणिमा ने यह कहा, आस्तिक की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोला, क्या तुम अपना फोन क्यों नहीं लाई? कम से कम फोन तो साथ लाना चाहिए था ना, इमरजेंसी में अगर किसी को कॉल करना होता तो।
अरुणिमा ने उसे घूरते हुए कहा, तो ये तुम्हें सोचना चाहिए था ना, तुम्हें ही थी जमीन देखने की इतनी जल्दबाजी कि मुझे ठीक से तैयार भी नहीं होने दिया। मैं अपना फोन ड्रेसिंग टेबल पर ही भूल आई और मुझे क्या पता था कि हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मुझे लगा हमेशा की तरह 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं अपना फोन घर पर ही छोड़ आई। आस्तिक ने झल्लाते हुए जंगल की तरफ देखा। अब वो सच में बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे।